एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास के संसार में उतर रहे हैं जो किताब कम और एक आईने का महल ज्यादा है।
हाँ, एक ऐसी रचना जिसे आप पढ़ते नहीं बल्कि सुलझाते हैं।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर नाबोकोव के 1962 के शासकार पेल फायर की। ये उपन्यास मतलब पाठक को एक तरह का जासूस बना देता है।
सही कहा, जो सच्चाई के धागों को जोड़ने की कोशिश में लगा रहता है।
और शुरू करने से पहले नाबोकोव को याद करना जरूरी है ना, एक रूसी अमेरिकी लेखक जो भाषा के जादूगर थे।
बिल्कुल, निर्वासन, स्मृति, शब्दों के खेल, ये सब उनके पसंदीदा विषय थे। और पेल फायर में तो उन्होंने इन सबको एक ऐसी संरचना में पिरोया है जो आज भी हैरान करती है।
हाँ, वो संरचना मतलब सोचिए, एक उपन्यास जो एक भूमिका या फॉरवर्ड से शुरू होता है, फिर एक 999 पंक्ति की कविता आती है, उसके बाद उस कविता पर एक विशाल और पूरी तरह से भटकाने वाली कमेंट्री,
और अंत में एक सूचकांक इंडेक्स, वो भी कहानी का हिस्सा है।
तो आज का बड़ा सवाल यही है, ये भूल भुलैया जैसी संरचना आखिर हमें किस कहानी तक ले जाती है, और क्या कला, आलोचना और पागलपन के बीच कोई सरहद होती भी है?
बिल्कुल, और कहानी के केंद्र में ही एक जंग छिड़ी हुई है, मतलब दो कहानियों की जंग।
अच्छा।
हाँ, पहली कहानी है जॉन शेट की, जो एक दिवंगत अमेरिकी कवि हैं। उनकी 999 पंक्तियों की कविता है पेल फायर, और वो कविता दिल को छू लेती है।
किस बारे में है ये कविता?
ये बहुत ही व्यक्तिगत है, जीवन, प्रेम, परिवार और अपनी बेटी हेजल की आत्महत्या से जो गहरा दुख पैदा हुआ है उस पर एक बहुत ही ईमानदार चिंतन है।
तो एक तरह से एक कलाकार की ब्रह्मांड में अर्थ खोजने की कोशिश।
बिल्कुल, एक सच्ची संवेदनशील कला का नमूना, एक शांत गहरी आवाज।
लेकिन फिर उस आवाज पर एक तूफान की तरह हावी हो जाती है दूसरी कहानी, और यहीं से नाबोकोव का असली खेल शुरू होता है ना?
हाँ, यहीं से। ये कहानी है चार्ल्स किनबॉट की, जो खुद को शेड का पड़ोसी, दोस्त और संपादक बताता है, और उपन्यास का ज्यादातर हिस्सा उसी की लिखी हुई कमेंट्री है।
और वो शेट की कविता पर एक तरह से कब्जा कर लेता है।
कब्जा बहुत सही शब्द है। किनबॉट का दावा है कि शेट की सीधी साधी कविता का असली मतलब कुछ और ही है। वो कहता है कि ये कविता असल में जेम्बला नामक एक काल्पनिक देश के निर्वासित राजा चार्ल्स द बिलवड की कहानी का एक गुप्त संदेश है, एक कोडेड मैसेज।
और सबसे बड़ी बात
वो कहता है कि वो निर्वासित राजा वो खुद है।
कमाल है।
फिर तो वो शेड की कविता की हर पंक्ति को तोड़ मरोड़ कर अपनी ही भव्य आत्ममुग्ध कहानी सुनाने लगता है। तो उपन्यास का पहला सवाल यही बन जाता है, ये कहानी आखिर है किसकी?
एक विनम्र कवि की या उसके मेगालोमेनियाक मतलब अहंकारी संपादक की?
चार्ल्स किनबॉट का किरदार वाकई अविश्वसनीय है। वो इस उपन्यास का दिल भी है और इसका कैंसर भी।
हाँ, एक ऐसा ट्रेजिकॉमिक प्रोटैगनिस्ट जिस पर आप हंसते भी हैं और जिसके लिए दिल में एक अजीब सी कसक भी उठती है।
बहुत जटिल किरदार है। एक तरफ वो बहुत अहंकारी है, उसे लगता है पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उस अहंकार के खोल के अंदर एक बेहद अकेला और टूटा हुआ इंसान है।
मतलब वो सिर्फ अपनी काल्पनिक मातृभूमि जेम्बला से ही निर्वासित नहीं है,
वो असल में वास्तविकता से निर्वासित है। उसकी हर बात, हर दावा उसके गहरे दुख और पहचान की तड़प से उपजा है। वो चाहता है कि दुनिया उसे देखे, उसे महत्वपूर्ण समझे,
और इसके लिए वो सच्चाई की बलि चढ़ाने को भी तैयार है।
बिल्कुल।
और यहीं पर नाबोकोव अनरिलायबल नरेटर यानी अविश्वसनीय कथावाचक के विचार को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। हमें किनबॉट की हर बात पर शक करना पड़ता है,
लेकिन मुश्किल यह है कि कहानी जानने का हमारे पास कोई और जरिया है ही नहीं।
सही बात है, और इसी वजह से दूसरा पात्र जॉन शेड और भी रहस्यमय हो जाता है। वो कहानी का केंद्र है, पर एक भूत की तरह अदृश्य है।
हाँ, हम शेड से कभी सीधे नहीं मिलते, हम उसे सिर्फ उसकी कविता और किनबॉट की यादों के जरिए जानते हैं, और किनबॉट की यादें कितनी भरोसेमंद है ये हम जानते हैं।
कविता से तो वो एक दयालु, विचारशील और सम्मानित कवि लगते हैं।
हाँ, जो अपनी बेटी की मौत के बाद जीवन के अर्थ खोज रहा है, वो विवेक और कलात्मक ईमानदारी का प्रतीक है। लेकिन किनबॉट की कर्कश आवाज उसकी शांत आवाज को लगभग निगल जाती है।
और इस कहानी में दो और किरदार हैं जो विवेक और भ्रम के इस टकराव को और तेज करते हैं। एक तो सिबिल शेड जॉन की पत्नी।
हाँ, सिबिल, वो वास्तविकता की प्रहरी है। वो किनबोर्ड के इरादों को शुरू से ही भांप जाती है और अपने पति की विरासत को बचाने की कोशिश करती है।
किनबोर्ड की नजरों में तो वो एक खलनायिका है,
पर पाठक समझ जाता है कि वो जमीन से जुड़ी हुई एक आवाज है। और दूसरा है उपन्यास का सबसे बड़ा रहस्य, ग्रेडस।
ग्रेडस
ये कौन है?
किनबोर्ड की महागाथा में ग्रेडस ज़ेमला का एक हत्यारा है जो राजा चार्ल्स यानी किनबोर्ड को मारने के लिए भेजा गया है।
लेकिन जैसे जैसे हम कमेंट्री में बिखरे सुरागों को जोड़ते हैं तो पता चलता है कि हत्यारा शायद जैक ग्रे नाम का एक स्थानीय पागल है जो जेल से भागा हुआ है।
अच्छा, तो ये एक पात्र किनबोर्ड की भव्य कल्पना और क्रूर वास्तविकता के बीच के टकराव का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है।
बिल्कुल,
मुझे लगता है इस उपन्यास का कथानक या प्लॉट कोई सीधे रेखा में नहीं चलता। असल में पाठक का इसे पढ़ने का सफर ही इसका कथानक है।
हाँ बिल्कुल, नैबोकोव हमें पाठक नहीं बल्कि एक जासूस बना देते हैं। आप भूमिका से शुरू करते हैं जहाँ किनबोर्ड बताता है कि कविता में कितने गहरे राज छिपे हैं, फिर आप शेड की खूबसूरत मार्मिक कविता पढ़ते हैं।
हाँ, कविता का वो हिस्सा जहाँ शेड अपने एक मौत के नजदीकी अनुभव के बारे में बताता है, उसे एक सफेद फवारा व्हाइट फाउंटेन दिखता है
और उसे लगता है कि उसे ब्रह्मांड का कोई रहस्य मिल गया। पर फिर उसे पता चलता है कि एक और महिला को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, लेकिन उसने एक पहाड़ देखा था।
और शेड को एहसास होता है कि ये शायद एक मामूली टाइपो या गलत छपाई थी, फाउंटेन की जगह माउंटेन। कितनी छोटी सी बात है लेकिन ये ब्रह्मांड की उदासीनता का प्रतीक बन जाती है।
और फिर कविता 999 पंक्ति पर अचानक खत्म हो जाती है, जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। और फिर शुरू होता है पागलपन का समंदर।
कमेंट्री जहाँ किनबोर्ड ज़ेमराई की अपनी महाकाव्य कहानी सुनाता है, क्रांति, एक गुप्त सुरंग से राजा का पलायन, अमेरिका में एक नई पहचान।
हाँ, वो शेड की कविता पर एक परजीवी की तरह चिपक जाता है, हर शब्द का मनमाना अर्थ निकालता है।
और कहानी का क्लाइमैक्स जॉन शेड की हत्या इस खेल को अपने शिखर पर ले जाता है। हमारे पास हत्या के दो संस्करण है, किनबोर्ड का संस्करण क्या है?
किनबोर्ड का संस्करण तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा है। ज़ेमरेला का हत्यारा ग्रेडस राजा यानी किनबोर्ड को मारने पहुंचता है, लेकिन जॉन शेड एक सच्चे नायक की तरह बीच में आ जाते हैं और
अपने दोस्त यानी राजा के लिए गोली खा लेते हैं, एक वीर बलिदान।
हाँ, लेकिन अगर पाठक जासूस बनकर सुरागों को जोड़े,
जेल से भागे पागल जैक ग्रे का जिक्र, जज गोल्सवर्थ का परिवार जो पहले शेड के घर में रहते थे, तो एक ज्यादा दुखद और यथार्थवादी तस्वीर सामने आती है।
बिल्कुल, हत्यारा कोई ज़ेमबलन जासूस नहीं बल्कि एक स्थानीय पागल था जो जज गोल्सवर्थ को मारना चाहता था। उसने शेड को गलती से जज समझ लिया।
मतलब शेड की मौत किसी राजनीतिक नाटक में वीरतापूर्ण बलिदान नहीं थी बल्कि एक अर्थहीन, दुखद और बेवकूफाना दुर्घटना थी।
और अंत में सूचकांक, वो तो कमाली है। वो सिर्फ शब्दों की सूची नहीं बल्कि किनबोर्ड का आखिरी दाव है, अपनी कल्पना को सच साबित करने की हताश कोशिश।
हाँ, ज़ेमला किंग चार्ल्स जैसे शब्दों को सूचकांक में डालकर उन्हें एक तरह की आधिकारिक वास्तविकता देने की कोशिश, ये पागलपन की हद है।
ये उपन्यास इतने गहरे दार्शनिक सवाल उठाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, यथार्थ क्या है?
सही बात है, पेल फायर दिखाता है कि यथार्थ कोई ठोस चीज नहीं है, ये एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। और अगर कोई किनबोर्ड जितना जुनूनी हो तो वो अपनी कहानी को ही यथार्थ बना सकता है।
और ये कला और आलोचना के रिश्ते पर भी एक तीखा व्यंग है। ये हर लेखक का सबसे बुरा सपना है ना?
बिल्कुल, कि कोई आलोचक आपकी कृति को समझने के बजाय उसे अपने अहंकार को चमकाने का आईना बना ले।
किनबोर्ड कला पर रोशनी नहीं डालता, उसे अपने अंधेरे से ढक देता है। नबोकोव ये सवाल खड़ा करते हैं कि किसी रचना का असली मालिक कौन है, उसका रचयिता या उसकी व्याख्या करने वाला पाठक।
पागलपन कल्पना और निर्वासन का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ नबोकोव का अपना जीवन भी झलकता है, वो खुद एक निर्वासित थे।
हाँ, और सवाल ये उठता है कि क्या किनबोर्ड का ज़ेमबोला का संसार सिर्फ पागलपन है, या ये निर्वासन और अकेलेपन के असहनीय दर्द से बचने के लिए गढ़ी गई एक जरूरी ढाल है। नबोकोव इस रेखा को बहुत धुंधला कर देते हैं।
और उपन्यास का शीर्षक पेल फायर, ये कितना प्रतीकात्मक है।
हाँ, शेक्सपियर के नाटक टिमोन ऑफ एथेंस से लिया गया है, जहाँ कहा गया है कि चंद्रमा अपनी पेल फायर सूर्य से चुराता है।
ये किनबोर्ड और शेड के रिश्ते का कितना सटीक प्रतीक है। शेड कला का दहकता हुआ सूरज है और किनबोर्ड
वो पीला चांद है जो उसकी रोशनी चुरा कर चमकने की कोशिश कर रहा है। एक परजीवी रिश्ता।
तो आखिर में ये उपन्यास पाठक पर क्या असर छोड़ता है? ये सिर्फ एक दिमागी कसरत या साहित्यिक पहेली नहीं है?
बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ये एक बौद्धिक खेल जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, एक गहरा दुख और उदासी सामने आती है।
पाठक जॉन शेड की दुखद अर्थहीन मौत और उसकी कला के इस तरह अपमानित होने पर शोक मनाता है।
हाँ, उसकी खूबसूरत शांत कविता को किनबॉट की पागलपन भरी शोर मचाती कहानी ने निगल लिया।
और फिर भी किनबॉट के लिए एक अजीब सी सहानुभूति भी महसूस होती है। वो एक राक्षस है लेकिन एक पीड़ित भी है।
बिल्कुल, अपने पागलपन के शानदार महल में वो कितना अकेला है। उसकी पूरी कहानी उसकी गहरी तन्हाई और महत्वहीनता के एहसास से पैदा हुई है। वो एक ही समय में खलनायक भी है और एक दुखद पात्र भी।
अंत में पेल फायर कहानी कहने की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देता है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन की कहानी में कितनी सच्चाई है
और कितनी वो टिप्पणी है जो हमने उस पर खुद लिखी है, ताकि हम अपनी कहानी के नायक बन सकें।
पेल फायर हमें सिखाता है कि सत्य और कल्पना के बीच की रेखा कितनी धुंधली, कितनी नाजुक हो सकती है।
और ये कि हर इंसान अपनी कहानी का नायक बनना चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।